संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान।
तो मैं सार परमागम की छठवीं सातवीं गाथा के आधार पर दिव्य दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल होती हैं या नहीं, नहीं होती हैं तो उसका क्या अर्थ है और पर्याय शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, इसकी चर्चा विगत आठ दिनों से अपन कर रहे हैं। अब अपनी जो चर्चा जिस बिंदु पे आ गई है वो पेज नंबर 77 नीचे से दो पैरे हैं 77 पर। इस प्रकार यह अत्यंत स्पष्ट है कि प्रवाह की निरंतरता को भी नित्यता कहते हैं, क्योंकि नित्यता और अनित्यता में काल की अपेक्षा ही मुख्य है। अतः नित्य का अर्थ वस्तु की सदा उपस्थिति मात्र इतना ही अभीष्ट नहीं है, अपितु उसमें प्रवाह की निरंतरता भी सम्मिलित है। यह नित्यता ही काल की अखंडता है जो दृष्टि के विषयभूत द्रव्य का अभिन्न अंग है। पिछले सात व्याख्यानों के संदर्भ में इस बात को आप ग्रहण करेंगे तो जल्दी समझ में आएगी। फिर भी मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूं कि नित्य माने क्या। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भावमय वस्तु होती है, वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल और भावमय होती है। कोई भी वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के बिना संभव नहीं है। और द्रव्य की अपेक्षा वस्तु के दो भेद हैं, सामान्य और विशेष। क्षेत्र की अपेक्षा दो भेद हैं, भेद और अभेद। काल की अपेक्षा दो भेद हैं, नित्य और अनित्य। और भाव की अपेक्षा दो भेद हैं, एक और अनेक। इस तरह से आठ जो पक्ष बनते हैं उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में एक एक में दो हैं। ये जो इन आठ से संयुक्त जो वस्तु है उसे हम मुमुक्षुओं की भाषा में बोले तो वो प्रमाण का द्रव्य है। तो जल्दी समझ में आ जाएगी, इसलिए वो मूल वस्तु है। अब उस मूल वस्तु में से सामान्य, एक, अभेद और नित्य, एक एक का एक एक हिस्सा निकाला। द्रव्य में से सामान्य लिया, क्षेत्र में से अभेद लिया, काल में से नित्य लिया और भाव में से एक लिया। तो ये चार तो द्रव्यार्थिक न्याय के विषय है, इसलिए इन चार का नाम है द्रव्य। जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय होता है उसका नाम है द्रव्य। वो जो द्रव्य प्रमाण का द्रव्य था उसमें तो आठों शामिल थे, और ये द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में चार शामिल हैं। और फिर उसका जो दूसरे है ना, विशेष, भेद, अनेक और अनित्य, ये जो चार पक्ष हैं ये पर्यायार्थिक न्याय के विषय होने से इन चारों का नाम है पर्याय। तो एक एक द्रव्य पर्याय अलग अलग हो गए। वो द्रव्य पर्याय वाला शामिल था ना जो प्रमाण का विषय, वो गुण पर्याय वाला ऐसा द्रव्य नहीं। ये पर्यार्थिक न्याय वाली पर्याय और ये द्रव्यार्थिक न्याय वाला द्रव्य, और इन दोनों को मिलाकर के जो विषय बनाता है उसका नाम है प्रमाण का द्रव्य। अन्ना जी ख्याल नहीं ना बात। अब द्रव्यार्थिक न्याय के विषय को की संज्ञा द्रव्य है और पर्यार्थिक न्याय के विषय की संज्ञा पर्याय है। पर संज्ञा माने नाम। द्रव्यार्थिक न्याय के विषय को द्रव्य कहते हैं और पर्यार्थिक न्याय के विषय को पर्याय कहते हैं, ये उसकी असली परिभाषा है। अब इसमें जो नित्य और अनित्य ये दो पक्ष रहे, ये काय की अपेक्षा है, एक काल की अपेक्षा है। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये चीज नित्य है, तो नित्य का मतलब क्या? अभी तक सब लोग नित्य का से समझते हैं कि वह कायम रहे हमेशा, उसका नाम नित्य है। और ये समझते हैं तो कोई गलत नहीं समझते हैं, बात ऐसी है भी, लेकिन उसके व्यापक अर्थ हमारे ख्याल में नहीं आता है। पलटना, उसका नाम ही कायम रहना है कि पलट के भी कायम रहा जा सकता। अभी तो हमें नहीं पलटना अर्थ समझते हैं नित्य का, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है। कोमल चंद जी साहब, ये जो अनादि से लेके अनंत काल तक प्रत्येक द्रव्य प्रति समय पलटेगा, एक समय भी पलटे बिना रहेगा नहीं, ये बात नित्य नहीं है क्या? अनित्य है। अनित्य का तो मतलब कभी पलटे हो कभी नहीं पलटे, ये तो नित्य पलटता है ना। तो पलटने शब्द के साथ में नित्यता का ऐसा लगता है जैसे हमें बैर विरोध हो, जबकि बैर विरोध नहीं है। जैसा वस्तु का स्वभाव कभी नहीं पलटना है, वैसा ही वस्तु का स्वभाव प्रति समय पलटना भी है। वो वस्तु का द्रव्य स्वभाव प्रति समय कभी नहीं पलटने का है, और वस्तु का ही पर्याय स्वभाव प्रति समय पलटने का है। कहा अभय कुमार जी कहें, पीछे बैठते हो क्या? प्रति समय पलटना है। ये दोनों वस्तु के स्वभाव है, ध्यान रखना। वो द्रव्य स्वभाव द्रव्य का स्वभाव है, और पर्याय स्वभाव पर्याय का स्वभाव है, ऐसा नहीं है। ये दोनों के स्वभाव है, दोनों के अनादि अनंत स्वभाव है, और दोनों के नित्य स्वभाव है। दोनों में नित्यत्व स्वभाव का रूप है। पर्याय नाम क्यों रखा? पर्याय स्वभाव फिर उसका, वो तो पर्याय स्वभाव तो पलटने वाला स्वभाव है, इसलिए उसका नाम रखा। किसी दुबले पतले कमजोर आदमी को यदि पहलवान सिंह नाम रख दे तो वो पहलवान हो जाता है। बलवंत सिंह नाम रखने तो वो बलवंत हो जाता है। ये पर्याय स्वभाव वस्तु का स्वभाव है, वो द्रव्य का स्वभाव है। पर्याय स्वभाव तो नाम इसलिए रखा कि पर्याय की तरफ से, पर्याय के बारे में वो स्वभाव है, पर्याय का स्वभाव नहीं है। पर्याय स्वभाव माने उसकी प्रति समय परिवर्तन उसमें होगा ही, उसका नाम है पर्याय स्वभाव, और वो नित्य है, वो अनित्य नहीं है। जैसे द्रव्य का कभी भी नहीं पलटना स्वभाव है, वैसे ही द्रव्य का निरंतर पलटना भी स्वभाव है। अब दोनों कैसे हो सकता है, कभी नहीं पलटना और निरंतर पलटना, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकती है? ए प्रतन समय सार की 308 से लेके 311 गाथा की टीका में कि जीवो ही तावत कृमिनीमात्म परिणामी रुतपद मानो जीवा एव नो जीवा, अजीवो भी कृमिनीमात परिणामी रुतपद मानो अजीवा एव नो जीवा। जीव अपने कृमिनियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, अजीव नहीं हो जाता। ये है कभी नहीं पलटना, जीव पलट के अजीब नहीं होता कभी भी, इसका नाम है कभी नहीं पलटना। और कृमि नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्य मानो, कृमि से नियमित जो अपने आत्मा के परिणाम, उनसे प्रति समय पलटता है। तो दोनों एक पंक्ति में दोनों बातें एक साथ कही, प्रति समय पलटने वाला जीव जो प्रति समय एक समय भी वैसा का वैसा नहीं, प्रति समय पलट और अनंत काल से पलट और अनंत काल तक पलटेगा, फिर भी वो पलट के अजीब हो जाएगा, ऐसा धोखा मत रखना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसका नाम है नहीं पलटना, और अपने में निरंतर परिवर्तन होता है उसका नाम है पलटना। और जो नित्य स्वभाव है वो इसलिए द्रव्य स्वभाव है कि द्रव्य नहीं पलटता, जीव द्रव्य अजीब नहीं होता, और वो नित्य पलटना ये पर्याय स्वभाव है क्योंकि वो प्रति समय पलटता है, और ये दोनों स्वभाव नित्य है। तो ये कहते हैं कि जैसे भगवान आत्मा जीव में अनंत गुण है, असंग प्रदेश है, और वो चैतन्य है, ये कभी नहीं पलटेंगे। असंख्यात प्रदेश से एक प्रदेश कम नहीं होगा, अनंत गुण में से एक गुण कम नहीं होगा, उसी चेतनता ये नित्य स्वभाव है ना। तो जैसे ये स्वभाव नित्य है, ऐसे ही उसके हर गुण में प्रति समय परिणमन होगा, ये भी उसका नित्य स्वभाव है। क्या तो अकेला नहीं पलटना ही नित्य स्वभाव नहीं है, प्रति समय पलटना भी नित्य स्वभाव है। देखो तो कहते हैं कि इसलिए नित्य शब्द में अकेली वस्तु की सदा उपस्थिति मात्र इतना ही नहीं आता है, लेकिन उसमें प्रवाह की निरंतरता ये भी आती है। ये आपके वाक्य पढ़ो आप इसमें, फिर अपन पढ़ते हैं जो अपन ने पढ़ा था ना वही। इस प्रकार यह अत्यंत स्पष्ट है कि प्रवाह की निरंतरता को भी नित्यता कहते हैं, क्योंकि नित्यता और अंतता में काल की अपेक्षा ही मुख्य है। अतः नित्य का अर्थ वस्तु की सदा उपस्थिति मात्र इतना ही अभीष्ट नहीं है, अपितु उसमें प्रवाह की निरंतरता भी सम्मिलित है। यह नित्यता ही काल की अखंडता है, जो दृष्टि के विषयभूत द्रव्य का अभिन्न अंग है। ये तो बहुत संक्षेप में आपको दोहराया है, ये पिछले 7 दिन का विषय धन कुमार जी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय निकल गया है, और जरूर सुनना है इनको, बहुत मार्म है। इसलिए मतलब अभी 5 मिनट में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, वो जो मैं 7 दिन में कह चुका हूं वो 5 मिनट में कैसे आएगा। लेकिन मांगीलाल जी आया, क्या आपके लिए आया। देखो प्रवाह की निरंतरता को भी नित्यता कहते हैं। प्रवाह की निरंतरता, नदी किसका नाम है, पानी का नाम है। बहुत पानी हो उसका नाम नदी है, बहुत पानी हो उसका नाम दरिया है, समुद्र है, झील है, तालाब है, बांध है। तो जो पानी नहीं हो उसका नाम नदी है, कि पानी का अभाव भी नदी नहीं है, और पानी का समुदाय भी नदी नहीं है, कि बहता हुआ पानी नदी है, पानी का प्रवाह नदी है। नदी में से प्रवाह निकाल दो तो नदी नहीं रहेगी, फिर वो तालाब हो जाएगी, वो बांध हो जाएगी, वो समुद्र हो जाएगी। गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा नदी है, और उसके बाद गंगा नदी नहीं है, तो बंगाल की खाड़ी है, तो वो खाड़ी है, नदी नहीं है। तो वालचंद जी साहब बोलो, आपने तो अपनी आंखों से देखा है नदी को खाड़ी बनते, वो कौन सा पुल है हावड़ा ब्रिज पे खड़े होकर, इधर को देखो तो नदी है, उधर को देखो तो खाड़ी है, पुल के इस तरफ नदी है, उस तरफ खाड़ी है, नदी है कि खाड़ी है, पानी तो वो एक ही है। प्रवाह की निरंतरता का नाम भी नित्यता है। देखो क्योंकि ये मर्म की बात पर, नित्यता में काल की ही है, धर्म है, धर्म माने इसे गुण धर्म शक्ति और वो होते हैं ना स्वभाव, तो ये स्वभाव है नित्य स्वभाव, ये धर्म है नित्यत्व, नित्यत्व समझे ना, तो ये गुण ही है एक तरीके से, ये शक्तियां हैं। तो ये शक्तियां, गुण, स्वभाव और धर्म हमेशा त्रिकाली होते हैं और नित्य होते हैं। यहां तक कि अनित्यत्व धर्म भी नित्य है और नित्यत्व धर्म भी अनित्य है। क्यों? अनित्यत्व धर्म में नित्यत्व का रूप है और नित्यत्व धर्म में अनित्यत्व का रूप है। ज्ञान धर्म, ज्ञान गुण में अनित्यत्व धर्म का रूप है क्या नहीं है? अनंत शक्तियों में, अन्य शक्तिवान आत्मा में अनित्य धर्म का रूप है क्या नहीं है? है राकेश क्या नहीं है? है तो इसलिए तो आत्मा अनित्य है। आत्मा नित्य, अनित्य क्यों है? प्रमाण का आत्मा नित्यानित्य क्यों है? अनित्य, अनित्य तो धर्म है ना उसमें। और एक धर्म, एक गुण का रूप सब अनंत गुणों में है क्या नहीं है? होता है क्या नहीं है? होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? ये भाषा तो बहुत अधूरी है कि द्रव्य नित्य है और पर्याय अनित्य है। पूरी भाषा ये है कि द्रव्य दृष्टि से द्रव्य नित्य है और पर्याय दृष्टि से द्रव्य अनित्य है। ये परफेक्ट भाषा है। ये जो अपरफेक्ट भाषा होती है वो नाटकों में होती है ना, नहीं। अदालती भाषा परफेक्ट होती है, न्याय शास्त्र की भाषा परफेक्ट होती है। क्या मतलब? जब नाटक लिखे जाते हैं तो उसने कहा तुम आओगे, बस इतना ही। नाटक में लिखा जा सकता है, न्याय में कहेगा तो उसे कहना पड़ेगा मैं अवश्य आऊंगा कि मैं नहीं आऊंगा, इतना बोलना पड़ेगा अदालत में। ऐसा करना काम नहीं चलेगा। क्या? क्योंकि तुम्हारा नाम बिमल कुमार है तो हूं नहीं चलेगा। हाँ मेरा नाम बिमल कुमार है, ऐसा बोलना पड़ेगा अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने, ऐसा नहीं चलेगा। और नाटक में चलेगा हूं तो साहित्य नाटक, तो साहित्य तो नाटक में भी आता है ना। तो साहित्य की भाषा में ऐसा आता, ऐसी भाषा आती है, पर्याय नित्य है, द्रव्य नित्य है, समझ गए ना? लेकिन वो उसका अर्थ ये है वास्तविक, कौन के द्रव्य पर्यायार्थिक दृष्टि से अनित्य है और द्रव्य द्रव्यार्थिक दृष्टि से नित्य है। ऐसा अर्थ है उसका पूरी, जिसमें अपेक्षा स्पष्ट कर दी जाए वो न्याय की भाषा है, जिसमें अपेक्षा साइलेंट रहे वो न्याय की भाषा नहीं है। ना अब क्या कहते, प्रवाह की निरंतरता, यानी जो अपन ने पढ़ा था ना, वस्तु की सदा उपस्थिति ही मात्र निरंतरता नहीं है, उसमें प्रवाह की निरंतरता भी शामिल है। क्योंकि नित्यता और अनित्यता में काल की अपेक्षा है, नित्यता में भी काल की अपेक्षा है और अनित्यता में भी काल की अपेक्षा है। तो वस्तु नित्य भी काल की अपेक्षा है और अनित्य भी काल की अपेक्षा है। माने वो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव है ना, वो काल पर्याय को बोलते हैं, समझे ना? काल द्रव्य गुण पर्याय में काल किसे बोलते हैं, पर्याय गुण किसे बोलते हैं? भाव को। द्रव्य वस्तु है ही और द्रव्य गुण पर्याय में प्रदेशों को लिया ही नहीं है, क्योंकि उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे प्रदेशों में फर्क स्वभाव भेद है ही नहीं। इस न्याय शास्त्र में तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चार लिए, लेकिन यह तीन ही लिए, द्रव्य गुण पर्याय। वो क्षेत्र को गुण कर दिया कि नहीं कर दिया? क्यों? कि क्षेत्र में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आत्मा का जैसा ये प्रदेश जैसा ये प्रदेश, और एक गुण, इसका नाम ज्ञान गुण, इसका नाम दर्शन, ऐसा भेद उसमें है ही नहीं। ये जानने का काम करेगा, ये देखने का काम करेगा, ये प्रदेश जानने का काम करेगा, ये देखने का काम करेगा, ऐसा भेद है ही नहीं। वो तो अपन ने कल विस्तार से समझाया था ना, आंख के प्रदेश नाक में आ जाते, नाक के प्रदेश आंख में चले जाते घूमते घूमते, यहां के प्रदेश देखते हैं और यहां के प्रदेश सुनते हैं और यहां के प्रदेश सूंघते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए उन्होंने इस आत्मा से प्रदेश को गुण कर दिया। लेकिन वस्तु में असंख्यात प्रदेशी जो आत्मा है वो उसका एक तार में एक पक्ष है, उसको आप गौण कर देंगे तो पूरी वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। तो कहते हैं कि वो जो काल का खंड है नित्यता वाला, वो दृष्टि के विषय में शामिल है, और उस नित्यता में कभी नहीं पलटना ही नहीं आता है। निरंतर पलटना ये भी नित्य है। अब कुमार जी, असली मर्म का बिंदु ये है, हम उसको निकाल देते हैं। किसको? कभी नहीं पलटने वाला तो समझते हैं नित्य में, वो तो सदा पलटने वाले को मैं कोई नित्यता में से निकाल देते हैं, वो तो अनित्यता है। तो अनित्यता निकाली तो भाई साहब अकेली पर्याय नहीं निकलेगी, अनित्यत्व नाम का धर्म भी निकल जाएगा। और एक धर्म निकला तो एक गुण निकला तो बस खंडित हो गया भगवान आत्मा। और वो कौन से भाव से खंडित होगा? क्योंकि गुण खंडित हुआ है, गुण की अपेक्षा भाव में है ना, और काल की अपेक्षा पर्याय में है। समझ गए ना? वो जो तुमने अनित्यता को वस्तु में से निकाला तो वो पर्याय नहीं निकली, अनित्यत्व नाम का धर्म निकल गया। और वो गुण है, वो भाव की भूल है, वो काल की भूल नहीं है। सोच लो भाई साहब, द्रव्यक्षेत्र काल भाव है ना, वो भाव की भूल है। ये जो कहने पर्याय पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल नहीं, उसका क्या अर्थ है ये समझने दो। अब देखो प्रश्न है, इसके बाद में प्रश्न है, बहुत बढ़िया। वो तो कूटस्थ अपना शब्द थोड़ी है, कूटस्थ जो शब्द है वो तो दूसरे मत का है, सांख्यों का है। प्रश्न, इस प्रकार काल की अखंडता को सुरक्षित रखने से द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत अर्थात दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं हो जाएगी क्या? शिष्य का प्रश्न है। क्योंकि परिणामों के अन्वय को ही तो काल की अखंडता कहा जा रहा है। ये परिणामों का अन्वय, ये कल समझाया था ना विस्तार से, अन्वय और वितरेक है ख्याल, अभी थोड़ा अभी भी स्पष्ट करूंगा, चिंता नहीं करना। क्योंकि परिणामों के अन्वय को ही तो काल की अखंडता आप कह रहे हैं ना, प्रश्न सार में नहीं आता है। अन्वय सो द्रव्य और अन्वय का वितरेक सो पर्याय, ये तो पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। अन्वय सो गुण प्रश्न सार में गे तत्व प्रज्ञापन में, अन्वय तो द्रव्य का लक्षण है और वितरेक पर्याय का लक्षण है, और इनने क्या लिया? काल का अन्वय। तो वो कहता है तुमने पर्यायों का अन्वय, अन्वय लिया तो पर्याय घुस गई, उसे दल लेता है। पर्यायों का अन्वय भी नहीं लेना, लेकिन अन्वय तो द्रव्य का। देखो फिर पीछे से, क्योंकि परिणामों के अन्वय को ही काल की अखंडता कहा गया है। जब परिणामों का अन्वय दृष्टि के विषय में आ गया तो परिणाम ही आ गए समझिए, ये आशंका है उसकी कि दूर से भी हमें तो उसका नाम नहीं लेना, पर नाम लिया तो वो आ जाएगा। क्यों? इसलिए नाम नहीं लेना। उत्तर, ऐसी बात नहीं है। अन्वय को गुण का और वितरेक को पर्याय का लक्षण कहते हैं। अन्वय तो गुण का लक्षण है, पर्याय का लक्षण नहीं है। अन्वय तो द्रव्य का लक्षण है, उपरतुसार में द्रव्य है। और ये जो इनका दिया ना जैसे इनका, तो उन्होंने समय सार में लिखा है, इसलिए इनको मुख्यता दी। प्रवचन सार का भी कह सकते थे, प्रवचन सार में अन्वय का लक्षण है, लेकिन अपने यहां एक बीमारी हो गई ना, वो एड्स से ज्यादा खतरनाक है। कौन सी बीमारी है महेंद्र? वो तो प्रवचन सार में है। ये बीमारी का नाम क्या है अभय जी? वो तो प्रवचन सार में है।
समझ में आया ना। जैसे प्रवचन साहब सीधा पाकिस्तान से आया हो, पंडित जी
वो ही प्रवचन सार कुंभ कुंभ का ही ग्रंथ है, और प्रवचन सार की टीका भी उन्हीं अमृतचंद आचार्य ने लिखी है, और जयसेन ने भी लिखी, और समय सार की भी टीका अमृतचंद ने और जयसेन ने लिखी।
ये कह के क्या कहना चाहते हैं? ये कह करके उस बात का वजन कम करना चाहते हैं
कि ये बात तो प्रवचन सार की है, ये बात कह के उस बात का वजन कम करना चाहते हैं। उसमें अमृतचंद और कुन कुन का वजन कम होगा? जिनके वजन से आप ये बात सिद्ध करना चाहते हैं वो भी उनने ही लिखा है भाई, तो जयसेन ने लिखा, तो अमृतचंद ने भी लिखा, और ये जयसेन ने दोनों ही ने लिखा। बोलो कौन है, जयसेन है अपने क्या अमृतचंद है अपने? अपने कौन है? क्यों राकेश तुम्हारे जयसेन है और हमारे अमृतचंद?
अरे भाई ऐसा भेद करने से कुछ भी नहीं है, ये हम आचार्यों की अवज्ञा कर रहे हैं।
देखो उनके मूल शब्द इस प्रकार हैं, अन्वयो गुणो गुणा अथवा सहभवा गुणा इति गुण लक्षणम व्यतिरेकण पर्याया अथवा क्रिम्भुवा पर्याया इति पर्याय लक्षणम।
तो अन्वय गुण का लक्षण है और व्यतिरेक पर्याय का लक्षण है।
देखो उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अनुस्तुति से रचित प्रवाह गुण है।
अनुस्तुति से रचित प्रवाह ये क्या है? कल तो अपन ने इसमें बहुत मेहनत की थी। दो तरह का था ना, कौन कौन सा? एक विस्तार क्रम वाला, एक प्रवाह क्रम वाला। अनुस्तुति से रचित प्रवाह विस्तार क्रम वाला माने प्रदेशों में, प्रदेश जो है ना असंख्य प्रदेश आत्मा के, वो बिखर के अलग अलग क्यों नहीं खिर जाते हैं? क्योंकि उसमें अनुस्यूति से रचित एक प्रवाह है। ऐसे ही पर्यायों में अनुस्यूति से रचित एक प्रवाह है। माने क्या कह रहे हैं कि ये जो दो पर्याय है ना, पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय, ये दोनों जुदी जुदी होने पर भी वो इतनी मजबूती से जुड़ी हैं कि वो जोड़ कोई मोतियों में पुरे हुए सूत के समान नहीं है। क्या मतलब? ये वितरे की उदाहरण है, सूत के समान नहीं है, तो सूत अलग।
अनुस्यूति से रचित जो वो प्रवाह है वो मालूम कैसा है कि जैसे हमने एक ही पत्थर में और माला बनाई हो।
क्या मतलब?
जैसे इतना मतलब समझे, संगमरमर का पत्थर हीरे तो इतना बड़ा कहां से लाऊं? संगमरमर का पत्थर लो और उसको माला बनाते ना मंदिरों में, एक माला लटक रही है तो उस संगमरमर को खोद खोद के और वो माला बनाते हैं। समझ में आई ना?
क्यों आप सुने ना?
तो वो दो संगमरमर के दो मोती ये आपस में जुड़े हैं, ये किसी मसाले से नहीं जुड़े हैं, है वे उसी पत्थर से वो अंदर में जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मोतियां सूत में परोई हुई माला के समान नहीं है, सिंगमरमर में बनी हुई मोतियों की माला के समान है।
आया ख्याल में ना? अनुस्यूति से रचित प्रवाह का अर्थ क्या है?
पीरन कुमार जी फिर कहता हूं कि ये जो वो अनुस्यूति से रचित प्रवाह है ना, कौन से दो पर्यायों के बीच में, दो प्रदेशों के बीच में, जो 99वीं गाथा में प्रवचन सार में है, तो अनुस्यूति से रचित प्रवाह कैसा है? कहने का मतलब यह है कि दो प्रदेश भी अलग अलग भी है और अंदर में बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। दो पर्याय अलग अलग भी हैं और अंदर में बहुत मजबूती से जुड़ी हुई हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं है।
दो प्रदेशों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, दो पर्यायों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, जो मोतियों की माला है जो डोरे से पोई गई है उसमें तो दो पर्यायों के बीच में स्पेस है, समझ जाए ना, उसमें तो स्पेस है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं मोतियों में डोरे से पलोई गई माला जैसा नहीं है उस सिंगमरमर में के मोती बनाए हो और वे मोती आपस में जुड़ी हो, मोती की माला बनाई हो, तो जिस सिंगमरमर से वो अलग अलग दिखाए गए हैं ना, उसी सिंगमरमर से वो अंदर से जुड़े हुए हैं, वो मसाले से नहीं जुड़े हुए हैं, वो दो मोतियों को जोड़ा नहीं गया हो, एक ही पत्थर के अंदर में दो है, तो एक ही द्रव्य में दो प्रदेश ऐसे हैं। वो है क्षेत्र की अखंडता, उसे बोलते हैं विस्तार क्रम, उसे बोलते हैं प्रदेशों का प्रवाह, अनुस्थिति से रचित प्रवाह। ऐसे ही दो पर्यायों के बीच में एक काल की अखंडता है, उसमें अनुस्थिति से रचित एक प्रवाह है, जो अनुस्थिति से रचित प्रवाह है वो द्रव्य का लक्षण है, वो अन्वय है, और अन्वय वो द्रव्य का लक्षण है। और जो पर्याय का व्यतिरेकीपना है वो पर्याय का लक्षण है। तो आप ये कहते हैं कि वो जब तुमने वो अंदर शामिल कर दिया ना, पर्यायों का प्रवाह, पर्यायों का प्रवाह माने तो पूरी पर्याय हो गई, तो पर्याय घुस गई द्रव्य में, घुस गई पर्याय, पर्याय दृष्टि के विषय में आ गई, इतना आ गई, क्योंकि उसका नाम तो द्रव्य है, समझ गए। हमको क्या चक्कर है कि हमने वो अनुस्थिति से रचित प्रवाह को भी पर्याय मान लिया है, वो ये चक्कर है, और इसलिए हम उसको भी निकाल के बाहर फेंका है। तो उससे जो द्रव्य खंडित हुआ है वो अकेली पर्याय खंडित नहीं हुई है, वो भाव की खंडता है, क्योंकि गुण निकल गया, अनित्व नाम का धर्म निकल गया, अनुस्थिति से रचित प्रवाह निकल गया, और प्रवाह तो नित्यता का लक्षण है, उनमें से अन्वय निकल गया, निकालना था व्यतिरेक को और निकल गया अन्वय। तो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, तो भले ही एक साथ पैदा हुए हों, एक ही बात रहे हों, और उनके बीच में अपने ऐसा स्पेस नहीं होता है, ऐसा ऐसा एक एक ऐसी भी बहुत कम जगह होती है ना, ऐसा लगे रहते हैं, तो अभी वे जुड़े जुड़े होते हैं और बाहर आ गए अलग अलग खेलने लगते हैं। लेकिन ऐसे कोई बच्चे कि जो जिनके दो अंग ही जुड़े हैं होते, ऐसे भी आजकल पैदा होने लग गया कि नहीं होने लग गए, और उनको अलग करो तो दोनों ही मर जाएंगे, जिंदा ही नहीं रह सकते, तो दोनों में फर्क है क्या नहीं फर्क है। ये दो पर्यायें आपस में ऐसी नहीं जुड़ी है, स्पेस नहीं है बीच में, फिर भी जुड़ी नहीं है, ऐसी नहीं है अशोक जी, वो ऐसी जुड़ी है कि वे अलग हो ही नहीं सकती तीन लोग और तीन काल में। उसका नाम है अनुस्थिति से रचित प्रवाह, और वो अन्वय है, और वो दृष्टि के विषय में शामिल हो गए। तुमने पर्यायों के प्रवाह को दृष्टि के विषय में शामिल कर लिया तो पर्याय शामिल हो गई। अब आप ऐसे कहते हो साहब जवाब दो, अपने पर्याय घुसेट दी, पर्याय कर दी, क्या जवाब दूं, दस दिन में जवाब नहीं दे पा रहा हूं मैं, मेरा जवाब दस दिन में पूरा नहीं हो रहा है, दस दिन हुए जाते हैं खत्म नहीं हो रहा है। हनुमान की पूज जैसे बढ़ती जा रहा है, अनुस्थिति से रचित प्रवाह। देखो उक्त कथन से स्पष्ट है कि अनुस्थिति से रचित प्रवाह गुण है, पर्याय नहीं। ये बात को समझना बहुत कठिन है, तो समझने के बाद शब्दों में बांधना और भी ज्यादा कठिन था, विशेषकर उस संदर्भ में जबकि अपने मुमुक्षु समाज में का जो वातावरण वर्तमान है और अराजकता जो वर्तमान की है, जो एक नेतृत्व तो नहीं है, अपनी अपनी ढपली और अपनी अपनी राग का जो वातावरण बन रहा है, वैसे वातावरण में और तात्विक ऐसी चर्चा में उनको इतने संतुलित शब्दों में ढालना बहुत कठिन काम था। क्या लेकिन कोशिश की है, पुण्य का उदय ये है कि लोग पढ़ते नहीं है तो झंझट नहीं खड़ा हुआ, 8 साल तक किसी ने कोई झंझट खड़ा नहीं हुआ, अब तो 8 साल पुराने चावल हो गए, अभी कोई कुछ कहेगा तो मैं कहूंगा कि 8 साल से कहां सो रहे थे, 8 साल से कहां सो रहे थे। ये हालत तो उन लोगों की है कि जो पूरी समाज में स्वाध्यायी समाज कहा जाता है। बोलो मणिसिंह जी, अपन को सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि सारी समाज में अपन अशोक जी स्वाध्यायी माने जाते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, चर्चा करने वाले। मैं देखो अभिमान की बात नहीं कहता हूं, लेकिन बहुत हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन कहता हूं कि अपने घर में बैठ के एकांत में अपने आत्मा से पूछना, मेरे से मुझे नहीं पूछना, ना मुझे जवाब चाहिए कि आपने इसे गहराई से पढ़ा था, और पढ़ा था तो मैं जो 10 दिन से कह रहा हूं वो आपकी समझ में आया था कि नहीं आया था। आपका मन जो जवाब दे उसके आधार से आप निर्णय करना। तो किसी की बात को पहले ही झटके में रिजेक्ट कर देने की अपेक्षा वो कहना क्या चाहता है ये समझ के रिजेक्ट करना ज्यादा बुद्धिमानी है कि नहीं है। यदि आपको इसमें कुछ ऐसा लगे कि सचमुच इसमें कुछ ऐसा था जो मेरी समझ में आज तक नहीं आया था, आज आया है क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आज भी स्वीकार नहीं हो तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन समझ में नहीं आया था और आज आया है और उसके पहले मैंने कमेंट्स किया था, ये तो समझदारी नहीं थी ना। जो कहना चाहते हैं वो समझ में तो आना चाहिए ना, इनकार हो हां हो ना, समझ के तो होनी चाहिए ना। और समझ में आ जाए तो मेरे पास आकर के कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी समझ में आ गया, क्योंकि उसमें तो मूछ का सवाल है, लेकिन अंदर में ही यदि आ जाए तो स्वीकार कर लेना अपने आत्मा के कल्याण के लिए, मेरे लिए नहीं, मुझे कोई किसी का वोट नहीं चाहिए क्या। लेकिन सचमुच ये परम सत्य है और ये भूल निकले बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसी मेरी पक्की आस्था है। इसलिए विनम्र होकर मैं आपसे हाथ जोड़ करके ये बात रख रहा हूं, कोई इसके लिए नहीं रख रहा हूं, आपका ध्यान जाए इसके लिए रख रहा हूं। क्यों, ये गुरुदेव का तत्व ज्ञान है असली, ये बात गुरुदेव ने बताई है। दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, उसका अर्थ ये है। इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनवाया, ऑडियो बनवाया, सीडी बनाई, सीडी का बाप बनवाया, क्या बना, क्या क्या बनवाया, वो कंपैक्ट सीडी सब बनवाया। ए बबलू ऐसा करना, वो पादमी जी जो डर है ना उसमें 10 प्रवचन भी डाल देना किसी ने, समझ गए ना, ए वाले 10 डाल देना। हाँ सब तो लोगों तक पहुंचना चाहिए ना। पादनी जी ने नक्की किया है कि प्रवचन सार के 25 कैसेट, समय सार के 25 कैसेट और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 25 कैसेट और उसमें 15-15 कैसेट और मिलाए जाएंगे, क्योंकि 40 कैसेट का ये कंपैक्ट सीडी बनेगी। वो आधी कीमत में 100 मुमुक्षु मंडलों को, व्यक्तियों को जिनके पास कंप्यूटर है उनको देने की घोषणा की है, और उसके लिए उन्हें 25,000 रुपये दिए हैं। तो इसमें जब तक 25,000 उनके खत्म नहीं हो जाएंगे तो 75 रुपये आपको देने पड़ेंगे और 75 रुपये पादनी जी देंगे, वो 150 रुपये में वो तैयार होंगे, क्योंकि इनकी वो मास्टर कैसेट बनाने में ही 10,000 रुपये खर्च होते हैं एक कैसेट के बनाने में। तो इस तरीके से वो आप तक पहुंचेगी, और इस योजना को सफल हुई तो पादनी जी का ऐसा कहना है कि मैं पूरे समय सार की ऐसी सीढ़ी बना करके सारी समाज को दूंगा, लेकिन ये प्रयोग के तौर पर उन्होंने अभी किया है, तो उसका लाभ सब लोग लिखाना है, ऑर्डर दे जाना है। जितने ऑर्डर देंगे तो करीब 100 सीडी बांटनी है अभी, 100 माने 300, एक समय सारी नियम सार की, तो ये 300 सीडी बांटनी है, तो 100 तक जब तक जाएंगी तब तक बुकिंग हम करेंगे, और 100 के बाद में फिर पादनी जी से पूछेंगे, वे कहेंगे बुकिंग करो तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे।
लेकिन ये बहुत मार्मिक बिंदु है। मेरा का मतलब ये है कि अपना काल सब आ गया है, पक गया है, बाल सफेद हो गए हैं, जाने वाले हैं। तो ये गुरुदेव का जो तत्व ज्ञान है असली, उस पर मंथन होके बात सही समझ में आकर के आगे कायम रहे। अकेले किताबों में लिखी जाने से कायम नहीं रहेगी, ये ट्रस्टों में रखी जाने से कायम नहीं रहेगी, ये हमारे दिमाग में लिखी जाना चाहिए तो ये कायम रहेगी। मांगीलाल जी, हमारे दिमाग में लिखी जाना चाहिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि 200 विद्यार्थी जो मेरे पास है इनके दिमाग में लिख दूं। क्योंकि ये मेरे को ज्यादा उपलब्ध है आपसे आदमी जी, और इनके दिमाग में लिखी जाएगी तो वो ज्यादा स्थायी है, कम से कम आपसे स्थायी तो है ही है। 50-60 वर्ष तक तो रहेगी ना, क्यों हमारा तुम्हारा अब क्या ठिकाना, कल भी रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। दिमाग में रहेगी तो ये फिर मल्टीप्लाई होगी, और कम से कम प्रवक्ता के दिमाग में रहे तो मल्टीप्लाई होगी। यदि जो प्रवक्ता नहीं है उसके दिमाग में रह गई तो लाभ तो होगा लेकिन अकेले उसको होगा, सबको उसका लाभ नहीं होगा। और यदि प्रवक्ताओं के दिमाग में लिखी गई तो फिर बहुत लोगों को लाभ होगा और इसका आनंद अधिक काल तक टिके रहने की संभावना बहुत है। इसलिए भाई ये बात समझना, आप विचार करना गंभीरता से। उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अनुस्यूति से रचित प्रवाह गुण है, पर्याय नहीं। काल का अन्वय गुण है और काल का व्यतिरेक पर्याय है। इस प्रकार काल की अखंडता दृष्टि के विषय में आ जाने पर भी उसमें पर्याय उसमें नहीं आती। अभी एक प्रकरण खत्म हो गया, अब कल दूसरा जो आएगा इसी टाइप का उसकी चर्चा कल करेंगे।